समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा। एंड लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा, किसी भी देश को अत्यंत महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी या आपूर्ति श्रृंखला को हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स से सामूहिक रूप से AI के उपयोग को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
डिफेंस मिस्टर राजनाथ सिंह हाईलाइट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, बूस्टेड ग्लोबल डिमांड फॉर इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स।
सर्वोच्च न्यायालय बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।
मेट डिपार्टमेंट इश्यूज रेड अलर्ट फॉर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इन ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्ट मध्य प्रदेश एंड ऑरेंज अलर्ट फॉर उत्तराखंड टुडे।
और विंबलडन टेनिस में यूकी भांबरी और उनके अमरीकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोव आज शाम पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about India's AI revolution. Yes, India is undergoing a remarkable transformation in artificial intelligence, driven by the visionary leadership of PM Modi. And for the first time in India's history, the government is actively shaping an AI ecosystem where computing power, GPUs and research opportunities are accessible at an affordable cost.
भारत के बिना AI अधूरा है। AI development एक collaboration है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने experience और learning से support कर सकता है। और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस के हिसाब से AI बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है।
पहले के समय की तुलना में भारत में अब AI ना तो कुछ विशेष लोगों तक सीमित है और ना ही इसमें वैश्विक तकनीकी दिग्गजों का वर्चस्व है। दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से मोदी सरकार छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को विश्व स्तरीय AI अवसंरचना के साथ सशक्त बना रही है, जिससे वास्तव में समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इंडिया AI मिशन और AI के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसे पहल देश के AI इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
आज भारत के पास एक और एडवांटेज जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये AI का दौर है, दुनिया का वर्तमान और भविष्य AI से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल AI पावर की एडवांटेज है। दुनिया की नजरों में एक ही AI है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी AI है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। हमारे लिए AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। भारत ने इंडिया AI मिशन शुरू किया। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में AI का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर AI सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं।
ये प्रयास 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां भारत आर्थिक विकास, शासन और सामाजिक प्रगति के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए एक वैश्विक एआई पावर हाउस बनने की आकांक्षा रखता है।
इंडिया इज रैपिडली बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एआई कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट्स ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज सेड दैट द अप्रूवल ऑफ द सिक्स्थ सेमीकंडक्टर यूनिट बाय द यूनियन कैबिनेट इज अनदर स्टेप टू इमर्ज एज अ टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस। And in a social media post, Mr. Shah said, the cutting-edge display driver chip production unit will be set up near Jewar Airport, which will harness the talents of the country's new generation by directly employing 2,000 youth.
वर्ष 2024 में इंडिया एआई मिशन की अनुमति के साथ सरकार ने एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 5 वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह क्षमता ओपन सोर्स एआई मॉडल डीप सीक की तुलना में लगभग 9 गुना और चैट जीपीटी द्वारा संचालित क्षमता का लगभग 2/3 है। ओपन सोर्स एआई मॉडल डीप सीक की तुलना में लगभग 9 गुना और चैट जीपीटी द्वारा संचालित क्षमता का लगभग 2/3 है।
यस नेहा, एंड द गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन फाउंडेशनल मॉडल्स इंक्लूडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड प्रॉब्लम स्पेसिफिक एआई सॉल्यूशंस टेलर्ड टू इंडियन नीड्स टू फॉस्टर एआई रिसर्च। मल्टीपल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैव आल्सो बीन सेट अप। And India's rapid advancements in artificial intelligence, underpinned by strategic government initiatives, have positioned the country as a global AI powerhouse. Prime Minister said this while participating in the outreach session on strengthening multilateralism, economic financial affairs, and artificial intelligence in Rio de Janeiro, that the progress and well-being of people largely depend on technology, especially artificial intelligence, in the 21st century. And the Prime Minister added that on one hand, AI can greatly improve everyday life, while on the other hand, it also raises concern about risks, ethics and bias. And Mr. Modi highlighted that India's approach and policy on it is clear, as it sees AI as a medium to enhance human values and potential. And the Prime Minister also said, working on the mantra of AI for all, today India is widely and actively using AI in sectors including agriculture, health, education and governance. And he noted that New Delhi believes that resolving concerns and encouraging innovation should be given equal importance in AI governance, and underlined the need to work together for responsible AI.
Prime Minister expressed that BRICS could play an important role in shaping a multipolar world. In this context, he also gave few suggestions in terms of considering setting up a science and research repository in the BRICS groups by the Global South countries to focus on supply chains of the critical minerals, both secured and make it resilient, and the BRICS group to work on responsible AI.
So to wind up our discussion on India's AI revolution, Neha, with a clear vision for the future, India is set to become a leader in AI innovation, shaping the global AI landscape in the years to come.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। वर्तमान ओडिशा में संबलपुर नामक क्षेत्र को कई विद्वानों द्वारा पद्म संभव के जन्मस्थान से निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिन्हें गुरु रिनपोछे या अनमोल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। वे उडियाना की प्राचीन भूमि के एक महान तांत्रिक बौद्ध गुरु थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। उन्हें शाक्य मुनि बुद्ध का अवतार माना जाता है, जैसा कि स्वयं बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी। हमारे संबलपुर संवाददाता से अधिक जानकारी।
Tibetan historical texts, such as the Statesman of Bam, mention that Padmasambhava came to Tibet during the reign of King Trisandisen. Ancient stories, such as the Cooper Palace, describe Padmasambhava's birth in a miraculous way. As an 8-year-old child emerging from a lotus flower floating on the lake of Dhanakosa, surrounded by divine being known as Dakinis in the kingdom of Uddiyana. In his research book, Uddiyana Guru Padmasambhava, the second Buddha, noted Indologist Prabir Kumar Patnaik argues that an ancient land of Uddiyana is linked to Odisha. He suggests that Padmasambhava was born in the village of Padmapur, located in the Jharsuguda district, which was then part of the Sambalpur region. This village is now submerged under the Hirakud Reservoir. Several idol and archaeological findings from the area support this connection. When these findings were presented at a seminar in Nalanda, many monks and followers from across the world visited Jharsuguda. On July 5th, they celebrated Padmasambhava's birth anniversary at Bhikampali for the first time. The Dalai Lama has also encouraged more research into Padmasambhava's root in Odisha. Historian N.K. Saho first highlighted this link in 1958, noting that names such as Odra, Udra and Oddiyana often refer to Uddiyana in ancient Buddhist texts. For Parikrama, this is Bismita Pradhan, Akashwani Sambalpur.
Puducherry made a significant stride on cruise tourism last Friday when the luxury cruise liner MV Empress, operated by Cordelia Cruises, anchored off its coast. The 210.8-meter-long ship, carrying approximately 1,231 passengers and 574 crew members, remained offshore during the day, with tourists ferried to land in smaller boats. This development marks an exciting milestone in the Union Territory's emerging cruise tourism profile. MV Empress, which began its second cruise of the month from Chennai today, is expected to return to Puducherry this Friday on its return journey from Vishakhapatnam. We have more from a correspondent.
The shimmering waters of Puducherry's coastline are witnessing a fresh wave of maritime tourism as Cordelia Cruises' MV Empress commences its weekly anchorage near the Union Territory. The ship and its passengers were received with much fanfare last Friday. Tourism Secretary Manikandan welcomed the guests in traditional Tamil style with flower garlands and white silk shawls. The visiting tourists were taken on a specially curated city tour in luxury buses arranged by the Department of Tourism. The itinerary included key attractions such as the Sri Aurobindo Ashram, Manakula Vinayaka Temple and the international township of Auroville. Speaking to Akashwani, Mr. Manikandan said the arrival of the cruise ship marks a major boost for Puducherry's tourism sector. He assured that all necessary infrastructure will be put in place to ensure a seamless and memorable experience for cruise tourists. The cruise liner had made a similar attempt 2 years ago, but administrative hurdles had delayed its visit. With all clearances now in place and logistics fine-tuned, its weekly anchorage is expected to bring renewed vibrancy to Puducherry's economy, benefiting local sectors such as transport, handicrafts, heritage tours and hospitality. With Cordelia Cruise set to make Puducherry a regular stop, the coastal town is now poised to transform from a tranquil heritage hub to a vibrant destination on India's cruise tourism circuit. For Parikrama, this is Bipin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। विंबलडन टेनिस में आज भारत के युकी भांबरी अपने अमरीकी जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवे के साथ पुरुष डबल्स के तीसरे राउंड में खेलेंगे। भांबरी एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी भी दौड़ में बने हुए हैं। इस बीच मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज एंड्रे रुबलेव को हराकर और शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका एलिस मर्टेंस को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
In some business news, benchmark domestic equity indices ended the week's first trading session on a muted note amid mixed global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose marginally by 10 points to close at 83,443. The National Stock Exchange Nifty 50 settled unchanged at 25,461. In the global crude oil market, Brent crude was trading almost 0.6% up at $68.70 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 96,970 rupees per 10 grams when reports last came in. And in a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight at 9:30 p.m., we will bring an insightful discussion on EPFO's Digital Transformation Simplifying Processes for Better Service Delivery with Ramesh Krishnamurthy, Central Provident Fund Commissioner, Employees Provident Fund Organization, EPFO. During the program, the listeners will have the opportunity to ask our expert their questions related to the Provident Fund. To participate, simply dial the telephone number 011-2342-1050 and 011-2331-0464 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
7 जुलाई मोहम्मद बरकतुल्ला की जयंती है, जिनका जन्म 1854 में भोपाल में हुआ था। भोपाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड के लिवरपूल में रहने लगे। वहां वे पत्रकार के रूप में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों तथा भारतीय राजनीतिक मामलों से संबंधित लेख प्रकाशित कराए। लंदन में रहने के दौरान वे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, नसरुल्ला खान और राजा महेंद्र प्रताप जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के संपर्क में आए।
1907 में उनकी मुलाकात अमेरिका में मैडम भीकाजी कामा से हुई। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और मुस्लिम हिंदू भाईचारे पर लेखों का योगदान दिया। फरवरी 1909 में वे जापान के टोक्यो में रहने लगे और 1910 में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका की शुरुआत की और 1911 में वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात की।
इस बीच प्रेस में उनके ब्रिटिश विरोधी लेख और बयान इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत में उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया बल्कि जापानी अधिकारियों पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप 1914 में उनकी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी प्रोफेसरशिप को रद्द कर दिया गया।
बाद में वे गदर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशा के साथ जापान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। इस पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1913 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी गए और चंपाक्रमण पिल्लई, लाला हरदयाल और अन्य लोगों के सहयोग से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। मोहम्मद बरकतुल्ला इस्तांबुल चले गए और वहां की सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
1915 में वे भारत जर्मन मिशन के सदस्य के रूप में काबुल गए और 1 दिसंबर 1915 को काबुल में प्रधानमंत्री के रूप में निर्वासन में ही भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इसे अंग्रेजों के दबाव में बंद करने के लिए मजबूर किया। बाद में वे पत्रकारिता फिर शुरू करने के उद्देश्य से जर्मनी वापस चले गए।
सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
तिरंगे को फहराकर या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर आऊंगा जरूर, यह कहने वाले जाबाज शहीद और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की आज पुण्यतिथि है। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। दुश्मन भी इनके नाम से थर थर कांपते थे। विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए दुश्मन उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। कारगिल युद्ध के हीरो के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां आज भी हमारी रगों में जोश भर देती है।
Yes, and he was posthumously awarded the Paramvir Chakra, India's highest military decoration, for his actions during the Kargil War. And on 7 July 1999, Batra was killed while fighting Pakistani troops at Point 4875 in the Kargil district of erstwhile Jammu and Kashmir.
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी।
Yes, and Sir Arthur Ignatius Conan Doyle passed on this day in 1930. He was a British writer and physician. He created the character Sherlock Holmes in 1887 for a study in Scarlet, the first of 4 novels and 56 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are milestones in the field of crime fiction. Doyle was a prolific writer. In addition to the Holmes stories, his works include fantasy and science fiction stories.
Music aur Bollywood industry ka bada naam Kailash Kher aaj apna janmdin mana rahe hain. Kailash Kher aaj kisi pehchan ke mohtaj nahi hai. कैलाश ने अपने करियर में 21 भाषाओं में 2000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। साल 2003 में संगीतकार विशाल शेखर ने कैलाश खेर से फिल्म वैसा भी होता है के गाने अल्लाह के बंदे गीत गवाया था। इस गाने ने घर घर में पहचान बना दी। इसके बाद स्वदेश का गाना यू ही चला चल हो या मंगल पांडे का गाना मंगल मंगल हो से देखते ही देखते सिंगर को एक पहचान मिल गई। कैलाश खेर ने बैक टू बैक कई सुपरहिट गाने गाए हैं।
यस एंड कैलाश खेर सिंग सॉन्ग विद अ म्यूजिक स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फोक म्यूजिक एंड सूफी म्यूजिक एंड बिसाइड्स द पद्मश्री ही हैज आल्सो रिसीव्ड टू फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर द हिंदी फिल्म फना and Filmfare Award for Best Male Playback Singer Telugu for the Telugu film Mirchi in 2013, along with several other nominations. And he's also received the Sur Jyotsna National Music Award 2021 for his contribution to Indian music. Let's listen in to a hit song of his.
Tere naam se jilu, tere naam se mar jau. Tere naam se jilu, tere naam se mar jau. तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी सैया सैया जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं
हाथ जोड़ के बोली गवर जा हाथ जोड़ के बोली गवर जा तीनों लोक बसाए बस्ती में बस्ती में आप बसे वीराने में जी आप बसे वीराने में अजी राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी राम भजो जी शिव का वंदन किया करो अजी शिव का वंदन किया करो जी
Yes, and they were listening to a medley of hit songs of Kailash Kher.
मैं जा रही हूँ, उसने कहा। जाओ, मैंने उत्तर दिया। यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ये पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह की। आज उनका जन्मदिन है। समकालीन कविता के सशक्त कवि केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। केदारनाथ सिंह की कविताओं का रोमानी अपनापन उन्हें वृहद कविता पाठकों से जोड़ता है। यही कारण है कि इंटरनेट के उपयोग के इजाफे और सोशल मीडिया के आगमन के साथ केदारनाथ सिंह की लोकप्रियता में और वृद्धि हुई है। वह साहित्यिक कविताओं के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। केदारनाथ सिंह कुछ यूं लिखते हैं, चट्टान को तोड़ो वह सुंदर हो जाएगी, उसे और तोड़ो वह और सुंदर होती जाएगी, अब उसे उठाओ रख लो कंधे पर, ले जाओ किसी शहर या कस्बे में, डाल दो किसी चौराहे पर, तेज धूप में तपने दो उसे, जब बच्चे आएंगे उसमें अपने चेहरे तलाश करेंगे, अब उसे फिर से उठाओ, अब की ले जाओ किसी नदी या समुद्र के किनारे, छोड़ दो पानी में, उस पर लिख दो वह नाम जो तुम्हारे अंदर गूंज रहा है, वह नाव बन जाएगी, अब उसे फिर से तोड़ो, फिर से उसी जगह खड़ा करो चट्टान को, उसे फिर से उठाओ, डाल दो किसी नींव में, किसी टूटी हुई पुलिया के नीचे टिका दो उसे, उसे रख दो किसी थके हुए आदमी के सिरहाने, अब लौट आओ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अगर कंधे दुख रहे हो कोई बात नहीं, यकीन करो कंधों पर, कंधों के दुखने पर यकीन करो और खोज लाओ कोई नई चट्टान।
Yes, and Roger Keith Seed Barrett passed away on this day in 2006. He was an English singer, guitarist and songwriter who co-founded the rock band Pink Floyd in 1965. And as a guitarist, he was influential for his free form playing and for employing effects such as dissonance, distortion, echo and feedback. Let's listen in to his hit track, Shine On You Crazy Diamond.
Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on you crazy
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रांची की गलियों से निकलकर देश के तिरंगे को शिखर तक पहुंचाने वाले धोनी न सिर्फ एक बेमिसाल कप्तान हैं, बल्कि संयम और विनम्रता की मिसाल भी हैं। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले माही ने न केवल बल्ले से कमाल किया बल्कि कप्तानी में इतिहास रच दिया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, ये सिर्फ ट्रॉफियां नहीं है, ये हर भारतीय के दिल की धड़कन है जिन्हें धोनी के शानदार नेतृत्व में भारत ने जीता। आज माही न सिर्फ क्रिकेट के मैदान से बल्कि हर उस युवा के दिल से जुड़ चुके हैं जो सपने देखता है और उन्हें जीना चाहता है। कैप्टन कूल ने क्रिकेट के मैदान से दौड़ लगाई और आज क्रिस तक पहुंचकर सबका दिल जीत लिया।
यस, महेंद्र सिंह धोनी इज द इंडियन प्रोफेशनल क्रिकेटर हु प्लेज एज अ राइट हैंड बैटर एंड विकेट कीपर वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक विकेट कीपर बैट्समैन एंड कैप्टन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन एंड धोनी हैज कैप्टन द मोस्ट इंटरनेशनल मैचेस एंड इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन। लेट्स लिसन इन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पिक्चराइज्ड ऑन हिम।
से आगे जिंदगी से चल, कुछ और भी मांगे क्यों, सोचना है जाना कहां, जाए वही ले जाए जहां बेसब्रियां।
Yes, and Sir Richard Starkey was born on this day in 1940. Known professionally as Ringo Starr, he is an English musician, songwriter and actor who achieved international fame as a drummer for the Beatles. Let's listen in to his hit track, It Don't Come Easy. Yes, and Rakesh Om Prakash Mehra was born on this day in 1963. He's an Indian film director, occasional actor and screenwriter. He's best known for writing and directing the drama Rang De Basanti and the biographical sports film Bhaag Milka Bhaag, winning 2 Filmfare Awards for Best Director. He also wrote and directed the supernatural action thriller Aks and the drama Delhi 6. Let's listen in to a song from the movie Delhi 6.
आज हिंदी सिने जगत के मशहूर अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की पुण्यतिथि है। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्हें अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता था। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा गया। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के करियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग बने। अभिनेता के जरिए निभाए गए दमदार किरदार आज तक नए कलाकारों के लिए अदाकारी का स्कूल हैं।
Yes, and Akbar Khan was born on this day in 1949. He's an Indian actor, screenwriter, film producer and director. He's the youngest brother of the Indian actors, producers, editors and directors Firoz Khan and Sanjay Khan. Akbar started his career as an assistant director to filmmakers and in 1974 he made his acting debut in the film Anjaan Rahe, which starred his brother Firoz in the main lead. And after acting in Akarshan in 1988, Akbar turned his attention to the TV industry and directed the first 15 episodes of his brother Sanjay Khan's epic TV serial, The Sword of Tipu Sultan. Let's listen into the theme song of that.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।